जय श्री राम। लास्ट वीडियो में जब मैं दक्षिण भारतीय कुंडली का जिक्र कर रहा था तो मैंने बताया था कि राशियों की महत्ता बहुत अधिक होती है और हम उत्तर भारतीय लोग राशियों को उस प्रकार इस्तेमाल शायद नहीं करते जिस प्रकार करना चाहिए। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से राशियों का इस्तेमाल करके आप नेटिव के स्वभाव और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में अच्छे से बता सकते। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे तीन कैरेक्टर जो तीन बॉलीवुड मूवीज के कैरेक्टर हैं उनके बारे में आपको याद दिलाना चाहूंगा जिसका मैं आगे यूज करूंगा इसी वीडियो में। पहला कैरेक्टर है मोहब्बतें मूवी, यदि आपने देखी हो तो उसमें अमिताभ बच्चन ने जो रोल प्ले किया था, अनुशासन, परंपरा, आदर्श, ये सब चीजें उसमें बोली जाती है। इतिहास के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर वो बंदा दृढ़ निश्चयी होता है, उस पर टिकना चाहता है। दूसरा एक कैरेक्टर है दिल चाहता है मूवी, अगर आपने देखी हो, उसमें सैफ अली खान ने एक रोल प्ले किया था, जो हमेशा कंफ्यूज रहता है और हमेशा दूसरे की सलाह लेकर कि ये करूं कि नहीं करूं, और वो दूसरे के ओपिनियन के अकॉर्डिंग काम करता है। और तीसरा एक कैरेक्टर जो मुझे याद आता है वो है ये जवानी है दीवानी, ये करके अभी 2013 में एक मूवी आई थी जिसका जो रणवीर कपूर ने रोल प्ले किया था। उस कैरेक्टर को दिखाते हैं कि वो घूमना पसंद करता है, स्वच्छंद रहना चाहता है, वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड नहीं करना चाहता और टिकाव या स्थिरता जीवन में नहीं है। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप इन तीनों में से किसके ज्यादा करीब हैं, आपका स्वभाव इन तीनों में से किससे ज्यादा मिलता जुलता है। तो शुरुआत करते हैं, पहले राशियों की बात करते हैं। देखिए, राशियों को क्लासिफाई अलग अलग ग्रुप में किया गया है, उनमें से आज मैं एक एक क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ उनकी मूवमेंट के आधार पर। मेष, कर्क, तुला और मकर राशि को 1, 4, 7, 10 राशि को चल राशि कहा जाता है। उसी प्रकार 2, 5, 8 और 11 वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ को स्थिर राशि कहा गया है, और मिथुन, कन्या, धनु और मीन को द्विस्वभाव राशि कहते हैं। अब इनका इस्तेमाल हमने करना है, इसमें से फलित निकालना है कि ये द्विस्वभाव का क्या अर्थ है, चर का क्या अर्थ है और स्थिर का क्या अर्थ है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में अध्याय 36 में इसका वर्णन किया गया है कि हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें लिखा है कि यदि आपका लग्न और अधिकतर ग्रह यदि चर राशि में है तो आप रज्जु योग में उत्पन्न हुए हैं। इसका फल क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूं। तो यदि आपका लगन और अधिकतर ग्रह मूवेबल साइन में है तो आप है तो आपका बर्थ जो है वो रज्जु योग में हुआ है। यदि आपका लगन और अधिकतर ग्रह स्थिर राशि में है, 2, 5, 8, 11 राशि में है, तो आपका जन्म मूसल योग में हुआ है, नाम है इसका मूसल। और यदि आपके अधिकतर ग्रह द्विस्वभाव राशि में है, आपका लगन द्विस्वभाव है, तो आपका जन्म नल योग में हुआ है। तो ये तीन तरह के योग होते हैं जो राशियों के इस तरह के वर्णन पर आधारित है। अब इसका फल क्या होगा, मेरे ख्याल से काफी हद तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस ओर जाने वाला हूं, फिर भी बता देता हूं। चर यानी मूवमेंट, अगर आपका लगन और अधिकतर ग्रह मूवेबल साइन में है तो आप महत्वाकांक्षी हैं, जल्दी निर्णय लेने वाले हैं और बदलाव आपको पसंद है, चेंज करने में आपको कोई परेशानी नहीं होती। आज मैं कहूं कि यू शुड चेंज योर जॉब, यू कैन डू इट इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन इफ यू बॉर्न इन दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। तो ऐसे लोगों को बदलाव अच्छे लगते हैं और साथ ही साथ में इनको अगर एक जैसा काम बहुत लंबे लंबे समय के लिए दिया जाए तो ये बोर हो जाते हैं, ये नहीं कर पाते। ऐसे लोग फील्ड वर्क करना पसंद करेंगे, जो ऐसे कोई जॉब करना पसंद करेंगे जिसमें फील्ड वर्क हो, अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन हो, तो वो चीजें इन्हें सूट करती है, उसमें इन्हें मजा आता है। जैसे कि मैंने कहा वो ये जवानी है दीवानी मूवी का रणबीर कपूर ने जो रोल प्ले किया था वो कैरेक्टर कि बदलाव हो उसमें, उसे वो दिखाते हैं कि वो ट्रेवलिंग पसंद करता है और जहां तक मुझे अभी याद है फोटोग्राफी का कुछ शौक होता है या कुछ मीडिया से रिलेटेड काम कर रहा होता है, ट्रेवल गाइड होता है। तो ऐसे काम इनको पसंद आते हैं जिसमें बदलाव रेगुलरिटी के साथ हो। देखिए, नॉर्मल ये न्यूटन का नियम है कि इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं कि आप जिस मोमेंट में हैं या जिस आप पोजीशन में हैं अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप मूव करते रहना चाहते हैं, और अगर आप रुके हुए हैं तो रुके रहना चाहते हैं। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं शुद्ध हिंदी। तो कोई भी चीज हो, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, अगर एक भारी बच्चा दौड़ता हुआ ढलान से उतर रहा है और आप उसे कहें रुक जा, तो वो नहीं रुक पाएगा, वो 2-4 कदम एक्स्ट्रा चल ही जाएगा। और इसी तरह से कोई रुकी हुई चीज को चलाना हो तो एडिशनल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं कि जो जिस पोजिशन में है वो उसमें रहना चाहता है, बॉडी उसके अगेंस्ट जाने में उसको थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ी एनर्जी उसमें लगती है। जो ये रज्जु योग में उत्पन्न होते हैं, इन लोगों में ये जड़त्व वाली चीजें कम होती है। दे आर क्वाइट क्विक क्विक, अभी निर्णय लिया, अभी काम चालू। इनके साथ तो बात करते हुए दिक्कत होती है कि इनको अगर हमने कोई आइडिया दे दिया तो बिना सोचे समझे ये उस आइडिया पे काम करने चालू कर देंगे। शीघ्र निर्णय लेते हैं, पर सही निर्णय लेते हैं या आवश्यक नहीं, ये ज्यादा सोचते नहीं, करो और देखेंगे देखेंगे। अब इसकी एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज यह है कि अगर मान लीजिए आपने औरों से पहले कोई काम स्टार्ट किया है, कोई नया काम, इनोवेटिव काम स्टार्ट किया और वो सक्सेसफुल हो गया, तो आप लीडर बन जाते हैं सोसाइटी की नजर में। अरे वो भाई साहब ने, उसकी सोच थी ये, उसने स्टार्ट किया था, अब बाकी लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, और अगर फ्लॉप हो गया तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसे लोग, अगर इनका जो आइडिया या जो इनकी एफर्ट है, अगर इफ दे आर डूइंग एफर्ट इन अ राइट डायरेक्शन, तो ये अव्वल आते हैं, ये बेंचमार्क सेट करते हैं, ट्रेंड सेटर होते हैं, आप ये कह सकते हैं, जो रज्जु योग में उत्पन्न। परेशानी वही है कि एक जैसी लाइफ पसंद नहीं है, लाइफ में उतार चढ़ाव पसंद है, और चलिए आपको तो पसंद है, लेकिन आप जिस परिवार के साथ रह रहे हैं उनको तो शायद पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए पारिवारिक जीवन पर थोड़ा सा संशय होता है कि इनके पारिवारिक जीवन ज्यादा अच्छा नहीं होता। अब बात करते हैं स्थिर राशि की। अधिकतर अगर आपका स्थिर राशि में हो तो हम बोलते हैं कि ये लोग संस्कृति, इतिहास, परंपरा, अपनी फैमिली के मूल्यों से जुड़े हुए होते हैं। अधिकतर ऐसे कार्य कर रहे होते हैं जो परिवार में चलता आ रहा है, बदलाव पसंद नहीं करते। इन्हें अगर आप कह दें कि फील्ड वर्क करो तो ये जनरली उनको वो पसंद नहीं आता है, कहते यार एक जगह बैठकर तसल्ली से काम करेंगे वो सही है, बार बार भागा दौड़ी करने में इनको ये उसमें कंफर्टेबल नहीं। स्थिर मति भी है, समझिएगा, स्थिर मति होना या स्टेबल माइंड होना एक अच्छा शब्द है विदाउट अ डाउट, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। आपने एक दिमाग में परसेप्शन बना लिया, आपने सोच लिया ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है, ऐसे व्यक्ति को समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसने तो अपना माइंड मेकअप करा ही हुआ है और उसमें बदलाव भी इजिली नहीं हो सकते। तो जिनका लगन और अधिकतर ग्रह वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ राशि में बैठे हैं, टोटल गिन लीजिएगा, अभी मैं एग्जाम्पल चार्ट भी आपसे शेयर करूंगा, तो अगर अधिकतर ग्रह उसमें बैठे हैं तो ये मान के चलिए कि इन लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल है। और एक और कमी, बड़ी बड़ी कमी आती है इनमें, और मैंने कई कुंडलियां ऐसी देखी है। मान लीजिए सन 70 में किसी व्यक्ति की जॉब लगी और उस समय उसकी सैलरी 8,000 या 5,000 के आसपास थी, जो उस समय के हिसाब से काफी ठीक सैलरी थी, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अच्छी सैलरी काउंट की जाती थी। आज भी यदि वह व्यक्ति सिर्फ 20,000 रुपए कमा रहा है और जॉब नहीं बदली उसने, क्योंकि उसको स्थिरता पसंद है, स्टेबिलिटी पसंद थी, उसी कंपनी में उसने अपने 30 साल या 35 साल दे दिए और एंड में उसे क्या मिला, 20,000 रुपए की सैलरी, शायद वो अगर अपने लिए कुछ और करता, चेंजेस करता, कुछ और नया अटेम्प्ट करता तो बेहतर कर पाता, लेकिन वो स्थिरता की वजह से, वो स्टेबिलिटी की वजह से वो लाइफ में ज्यादा कुछ अटेन नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिरता कई बार नुकसान दे जाती है। मेरी बात अगर आप समझ रहे हो तो, कई बार बदलाव आवश्यक होते हैं, समाज के साथ आपको बदलने की आवश्यकता होती है, सोचने की आवश्यकता होती है कि इसी ढर्रे पे मेरी जिंदगी अगर चलती रही तो 30 साल बाद में कहां हूंगा या 20 साल बाद में कहां होगा। अभी तो आप उस कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे, आप जैसे रहते हैं वैसे रहना चाह रहे हैं कि भैया नहीं, मुझे बदलाव पसंद नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन कब तक। और कई बार नेचर आपके अगेंस्ट अगर काम करती है, नेचर अगर आप में बदलाव लाना चाहती है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाए कि आसपास बदलाव हो जाए, तो आप फिर कहीं के नहीं रहते। तो इन्हें पुश करना पड़ता है चेंजेस के लिए, ये अपने एंड से एक्सेप्ट नहीं करते चेंजेस, और जहां भी चेंजेस होंगे वहां पर ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। रिलेशनशिप की भी बात करते हैं, अगर ऐसे लोग कम दोस्त बनाएंगे, लेकिन जो दोस्त बनाएंगे अच्छे बनाएंगे, इन्हें हर किसी से दोस्ती करना पसंद नहीं है, क्योंकि इनकी जो इमोशन है वो काफी स्टेबल है। चार दोस्त होंगे, अच्छे दोस्त होंगे, 10 दोस्त नहीं बनाएंगे जो कि किसी काम के ना हो, ठीक है। वो एक चीज अच्छी है। साथ ही साथ में ऐसे मैंने कहा इमोशनली भी अगर स्टेबल, इमोशन एक ऐसी चीज है जिनको, जिसको मैं कहूँ कि बदलाव आवश्यक है। आप कभी देखिए, देखिएगा कि चौथे भाव में जलीय राशि को अच्छा माना गया है, चौथे भाव में जलीय ग्रह को दिग्बली माना गया है, शुक्र चंद्रमा को। ये दर्शाते हैं कि मूवमेंट होते रहना इमोशन में वो जरूरी है। एक जैसा स्टेबल इमोशन आपको नुकसान देता है। किसी के प्रति आपके मन में घृणा आ गई और आप उससे फिर वो बे इंतहा घृणा करे जा रहे हैं तो वो गलत है। ईर्ष्या आ गई या द्वेष आ गया या इवन प्रेम आ गया, अगर किसी पे बहुत ज्यादा आप अटैच हो गए किसी से और वो व्यक्ति आपको उतनी तवज्जो नहीं दे रहा है जिंदगी में, तो भी आप दुखी होते हैं। तो जो इस योग में पैदा होते हैं मूसल योग में, उनके साथ ये परेशानी आती है कि कम दोस्त बनाएंगे, अच्छे दोस्त बनाएंगे, जो कह दिया उसी को फॉलो करना है, ज्यादा बदलाव पसंद नहीं है, लाइफ जैसी चल रही है चलते रहने दो। अच्छी बात यह है कि अपनी ये संस्कृति को नहीं छोड़ते। अच्छा, यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो रज्जू और मूसल में फर्क है। देखिए, पेड़ की जड़ें, पेड़ का वो भाग है जिसकी वजह से वो खड़ा रहता है। रज्जू योग वाले क्योंकि मूवमेंट पसंद करते हैं तो वो जड़ों के साथ रहना पसंद नहीं करते। मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। किसी भी देश की संस्कृति या उसके उसकी आइडियोलॉजी को खत्म करना हो तो उसकी हिस्ट्री को खत्म कर दीजिए, जो कि वियतनाम में ट्राई किया गया था, जो कि इंडिया में ट्राई किया गया था, कि अगर आप इनके कल्चर को, इनकी हिस्ट्री को, इनके रिलीजन को खत्म कर देंगे तो ये लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। वियतनाम में ये चीज पूरी तरह फ्लॉप रही, उन्होंने नहीं छोड़ा तो वो आज भी उस आइडेंटिटी के साथ रह पा रहे हैं। और हिंदुस्तान में भी काफी लोगों ने इसको नहीं छोड़ा तो आज उस वे में हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो जड़ों को नहीं छोड़ना भी आवश्यक है, जो मूसल योग वाले करते हैं कि जैसा चलता आ रहा है, जो हमारी फैमिली कल्चर है, हम उसको फॉलो करेंगे। और रज्जु योग में क्या होता है कि आप अपने कल्चर से विड्रॉ कर लेते हैं इजीली। अच्छा ठीक है, कुछ नया, अच्छा चलो नया करते हैं, नया ट्राई करते हैं। वो नया ट्राई करने में कई बार आप अपने कल्चर, अपने इतिहास को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, जो कि आगे चल के नुकसानदायक होता है। तो रज्जु योग के लोग भी जरूरी है, जैसे वो अमिताभ बच्चन थे मोहब्बतें मूवी में, वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं परंपरा वाला, मैं बाकी वर्ड भूल गया। तो कहने का अर्थ यह है कि आप अपने नियमों पर अडिग हैं, आप चाहते हैं कि लोग वो फॉलो करें और उसकी वजह से सोसाइटी में ग्रोथ होगी और आपका कल्चर भी सर्वाइव करेगा। ड्रॉबैक मैं बता ही चुका हूँ कि ऐसे लोगों का ड्रॉबैक ये होता है कि ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं हो पाती जितनी की रज्जु योग में हो सकती है। अब बात करते हैं तीसरे वाले की, नल योग की। नल योग द्विस्वभाव लग्नों में होता है, जब आपका लग्न और आपका अधिकतर ग्रह द्विस्वभाव उसमें। द्विस्वभाव का मतलब ही है डुअल नेचर। आप खुद कंफ्यूज हैं कि मैं मूवमेंट करूं, मैं ग्रोथ ऑप्ट करूं या मैं स्टेबिलिटी ऑप्ट करूं। और देखिए, आप कुछ भी ऑप्ट करें लेकिन अगर आप पूरे दिल से ऑप्ट करते हैं ना, तो आपको अपने डिसीजन पे कई बार गिल्ट फील नहीं होता कि हाँ मैंने ये सोचा, मैंने इस पे डिसीजन लिया और ये मैंने किया है। लेकिन द्विस्वभाव लगन वाले में क्या प्रॉब्लम है कि आप हाफ हार्टेडली किसी डिसीजन में जाते हैं। आपका एक प्लान बी, माइंड के बैक ऑफ द माइंड प्लान बी चल रहा होता है, आगे प्लान ए चल रहा होता है, प्लान ए पर आपने कदम भी रखा है लेकिन अभी भी प्लान बी के बारे में सोचो कि अगर मैं वो करता तो शायद आज मैं कहीं और होता। भाई साहब, आप सुखी नहीं रह पाएंगे। आपको एक तरफ होके पूरी एनर्जी लगानी चाहिए। नल योग का ये ड्रॉबैक है। नल योग वाले इंटेलिजेंट होते हैं, बैलेंस रहते हैं, स्थिर और चर के बीच में है, तो ये बैलेंस रहने की कोशिश करते हैं। इनका प्रयास रहता है कि स्थिति को मेंटेन कैसे किया जाए, पर ये बैलेंसिंग एक्ट में ही मिडिल क्लास रह जाते हैं। ये मैं अधिकतर लोगों की, मेरा जो अपना अनुभव रहा है, मैं वो आपसे शेयर करूंगा कि जो बहुत, जिन्होंने अपने जीवन में शिखर को प्राप्त किया है करियर में या पर्सनल लाइफ में, वो लोग या तो स्थिर वाले मिले या चर वाले मिले। द्विस्वभाव वाले थोड़े संशयात्मक, अपने ही निर्णय पर डाउट करने वाले और दूसरे की राय से अपना जीवन चलाने वाले, और अवसर निकलने के बाद फील करने वाले कि यार ये मैंने क्यों नहीं किया, ये मैं कर सकता था। वो नेगेटिविटी इसमें दिखती है। स्वभाव अच्छा होता है, नॉलेजेबल होते हैं। वैसे भी आप सोचिए ना, द्विस्वभाव लगन या तो गुरु का होगा या बुध का होगा, दोनों ही ज्ञान के ग्रह हैं, बुद्धि से संबंधित है, दिमाग है, लेकिन निर्णय लेने की शक्ति कहीं ना कहीं आपकी वो आप फंसे हुए हैं द्विस्वभाव और चर के, सॉरी चर और स्थिर के बीच में, जिस वजह से निर्णय लेने की शक्ति आपकी थोड़ी डाउन हो गई है। और जैसे मैंने कहा, कोई भी निर्णय लो, पूरे दिल से लो, आपका सही होगा या गलत वो बात की बात है, लेकिन आप कम से कम तसल्ली से ये तो कह सकेंगे मैंने सोच समझ के लिया था, नहीं चला नहीं चला। लेकिन द्विस्वभाव में क्या प्रॉब्लम है कि आप कोई भी निर्णय लेंगे वो हाफ हार्टेडली लेंगे, और आपके दिमाग में जो दूसरा वाला प्लान था वो जिंदगी भर के लिए रह जाएगा कि मैं वो भी करता तो शायद कहीं और होता, शायद मैं ये कर रहा होता, शायद मैं यहाँ होता, वो शायद वर्ड जिंदगी के आनंद को खराब कर देगा। तो ये नल योग की कमी है। अन्यथा नल योग जैसे मैंने कहा बौद्धिक क्षमता के लिए अच्छा योग है। पारिवारिक जीवन इन लोगों का अच्छा रहता है क्योंकि ये दूसरे के अनुरूप अपने जीवन को ढालने का प्रयास करते हैं, जैसा पार्टनर मिलता है उसके अनुसार सोचते हैं कैसे करा जाए, समझ रहे, क्योंकि द्विस्वभाव है ना, तो ये चाहते हैं कि कोई इनको गाइड करे, कोई इन्हें बताए, उसके अकॉर्डिंग ये अपने प्लान को आगे लेके जाए। यहाँ पर धनु थोड़ा सा मैं कहूंगा कि एक्सेप्शन है, नो डाउट ये भी द्विस्वभाव लगन है, लेकिन कहीं ना कहीं अग्नि तत्व राशि होने के कारण और गुरु की राशि होने के कारण इनमें वो संशय वाली जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी कम देखने को मिलती है, बाकी में इनमें ज्यादा होती है। अब मैं कुंडली के आधार पर आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको कुंडली में देख सकते हैं। वैसे तो